हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इनायत अपनी किस्मत को कोस रही थी। कहाँ उसने इतने बड़े बड़े ख्वाब देख लिए थे। शायद उसे हक ही नहीं था इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने का, क्योंकि वो सारे ख्वाब एक पल में ही टूटकर बिखर गए थे और अब वो सिर्फ अपनी टूटी हुई जिंदगी को जी रही थी, क्योंकि जीने की चाहत उसके अंदर खत्म हो चुकी थी। बस सांसें चल रही थीं और उसके खत्म होने का वो इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, क्योंकि गले से खाना तो सिर्फ पानी के साथ ही उतर रहा था। बहुत मुश्किल से अपने चेहरे को नीचे झुकाते हुए रोटी के टुकड़े को मुंह में डाल रही थी और बहुत मुश्किल से उसे चबा रही थी। उसकी आंखों से कैसे आंसू निकल रहे हैं और वो उन्हें किस तरीके से अपने दुपट्टे के कोने से पोंछे जा रहे हैं, रियाज ये सारी चीज महसूस कर पा रहा था। उसकी धड़कनें अचानक से मचलने लगती है और वो बेचैनी महसूस करने लगता है। उसके हाथ खाने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ है। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अपनी आंखें बंद करके उसने एक गहरी सांस छोड़ी। उसे पता था कि ये उसका पछतावा है, पर उसे ये पछतावा महसूस नहीं करना था। उसे इस बात के लिए किसी भी तरीके का कोई मलाल नहीं था कि उसने इनायत के साथ क्या किया है। एक गहरी सांस छोड़कर वो वापस अपने फ़ोन पर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ पर उसके माफिया ग्रुप के साथ उसकी बात चल रही थी। एक मेंबर ने कहा कि कल रात गोदाम पर जो हमला हुआ था उसके बारे में रियाज ने क्या सोचा है, तो रियाज उसके रिप्लाई में कहता है कि शेरा जो हथियारों का कंसाइनमेंट लोड करवाने वाला था उसे जानबूझकर बहकाया गया था ताकि गोदाम पर आग लगाई जा सके, लेकिन करण ने सही मौके पर पहुंचकर सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था और अब स्थिति बेहतर है। पर रियाज ने साथ में ये भी अपने ग्रुप से कहा कि ये काम किसी बाहर वाले का नहीं है, जरूर कोई आसपास का व्यक्ति ही है जो उनकी बातों को बाहर पहुंचा रहा है, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि रियाज मलिक सैयद के गोदाम तक पहुंचकर उसमें आग लगा दे। ये जरूर कोई खबरी है जो उनके बीच बैठा हुआ है। रियाज ने अपने सारे मेंबर्स को बहुत स्ट्रिक्टली कहा कि काम पर लग जाएं और जो भी वो गद्दार है उसे ढूंढें। उसका मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ही नहीं लीक नहीं की होगी। अगर वो उन लोगों के बीच शामिल है तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो बाहर दुश्मनों तक पहुंचा रहा होगा, और ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद रियाज अपनी जगह से खड़ा होता है। वो अपना मोबाइल लेता है और सीधे लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। उसने इनायत की तरफ नहीं देखा और ना ही उससे कुछ कहा। इनायत चुपचाप अपना खाना खत्म करने लगी। एक बार जब उसका खाना खत्म हो गया तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। वो बेड पर बैठी ही थी कि तभी एक नौकरानी उसके कमरे में आती है। इनायत हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, जी मैडम, हमें आपके पैरों को फिर से बांधना होगा, मालिक के ऑर्डर हैं। इनायत हैरान हो जाती है और हैरानी से उस नौकरानी को देखते हुए कहती है, लेकिन अब क्यों, मुझे तो सज़ा बस एक रात के लिए मिली थी ना, तो अब मेरे पैरों को दोबारा से जंजीरों में क्यों बांधा जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, तुम लोग मेरे पास मत आना, मैं दोबारा से इस जंजीर में कैद नहीं होना चाहती हूँ। सॉरी मैम, लेकिन हमें ये करना ही होगा, हमें मालिक ने हुक्म दिया है और हमें उनके हुक्म को मानना ही होगा। ये कहते हुए वो नौकरानी इनायत के पास आने को होती है, लेकिन इनायत अपने पैर पीछे लेती है और घबराते हुए रोने लगती है। वो जल्दी से ना में सर हिलाती है और कहती है, वहीं पर रुक जाओ, मेरे पास मत आना। इनायत रोते हुए चिल्लाते हुए उन लोगों से कहती है। नौकरानी बिल्कुल उसके पास आ जाती है और उसे देखकर बहुत ही रिक्वेस्ट तरीके से इनायत से बोली, आई एम सॉरी मैम, लेकिन हमें ये करना ही होगा, क्योंकि ये मालिक के ऑर्डर है, अगर हमने उनके ऑर्डर नहीं माने तो सज़ा हमें मिलेगी, प्लीज़ आप हमारी हालत समझिए। इनायत समझ सकती थी कि ये लोग भी अपने मालिक के सिर्फ हुक्म को ही मान रहे हैं। उसकी बातों में जितनी रिक्वेस्ट थी उससे इनायत को महसूस हो रहा था कि इन लोगों के हाथों में भी कुछ नहीं है। इनायत हताशा के साथ अपनी आंखें बंद करती है और हाँ में सर हिलाती है। وہ واپس بیڈ کے کونے پر بیٹھ جاتی ہے. نوکرانی اس کے پیروں کے پاس جھکتی ہے اور جنجیر کو دوبارہ سے عنایت کے پیروں میں باندھ دیتی ہے. وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے اور عنایت کے سامنے اپنے جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ کہتی ہے, آئی ایم سوری, ہم یہ کرنا نہیں چاہتے تھے, پر ہمیں آرڈر ملے ہیں اور مالک نے ہم سے کہا ہے کہ آپ کے پیروں سے یہ جنجیر صرف تبھی ہٹ سکتی ہے جب آپ واش روم کا استعمال کریں گے. اگر آپ کو واش روم کا استعمال کرنا ہوگا تو آپ یہ بٹن پریس کر دیجیے, ہم میں سے کوئی آ جائے گا اور آپ کے پیروں سے یہ جنجیر کھول دے گا. نوکرانی یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد ہی عنایت اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھک کر پھپھک پھپھک کر رونے لگتی ہے. کتنی اسہائی تھی وہ اور کتنی لاچار ہو گئی تھی. اس کے پتا کے بعد اس ساری دنیا نے اس کا استعمال کیا تھا اور سب بس اس سے اپنا مطلب نکلوانا چاہتے تھے. اس کی پرواہ کسی کو نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں سوچتا تھا. اس نے روتے بلختے ہوئے پورے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا. یہ چھوٹا سا بدبودار کمرہ ہی اب اس کی پہچان بن کے رہ گیا تھا. اسے اپنے سینے میں ایک جکڑن سی محسوس ہونے لگی. وہ اپنے سینے پر اپنے ہاتھ رکھتی ہے اور وہاں پر زور سے مسلتے ہوئے وہ اپنوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے, پر اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا. نہ اس کی امی, نہ اس کے ابو, نہ اس کے بھائی بہن, نہ اس کا کوئی رشتے دار اور نہ ہی اس کا کوئی دوست. اگر کچھ تھا تو صرف خالی دیواریں اور سناٹے بھری اس کی زندگی. وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہے اور ہر جگہ ہاتھ پھیلا کر کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ ہواؤں میں کسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے, پر جنجیر بندھے ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں جا پا رہی تھی. عنایت ڈپریشن میں جا رہی تھی اور یہ ڈپریشن کا پہلا لکشن تھا. جہاں پر عنایت کو ہلوسینیشن ہو رہا تھا کہ اس کے امی اور ابو آس پاس ہی ہیں اور وہ انہی کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی, پر جب وہ ناکامیاب رہی اور آنکھوں کے آنسو بھی سوکھ گئے تو وہ کب سو گئی اسے پتا ہی نہیں چلا. اس کے سونے کے بعد کمرے کا دروازہ ایک بار پھر سے کھلتا ہے اور نوکرانی کمرے میں داخل ہوتی ہے.